مومنین، یہ سورہ مریم کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا 51ویں آیت ہے. اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ مخلص نبی مرسل تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے کتاب کے اندر موسیٰ کا ذکر کیا جائے، جو کہ انہو کانا مخلصاً، مطلب خالص تھے، پاک تھے، اور کانا رسولاً نبیہ، وہ نبی تھے جو کہ رسول بھی تھے، دونوں چیزوں میں تھی. تو مخلص سے کیا مراد ہے؟ خالص کون ہوتا؟ جو کہ صرف خدا کا ہو جائے، جو خالص خدا کا ہو، پاک ہو، جو اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ اس کا ہر کام صرف خدا کے لیے ہو، اس کو مخلص کہا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح تعریف کری ہے ان کی. اور آگے اللہ فرماتا ہے، وہ نادیناہ من جانب الطور الایمنی وقربناہ نجیہ، اور ہم نے انہیں کوہ طور کے دائیں جانب سے آواز دی، اور ہم کلامی کا شرف دیتے ہوئے تقرب عطا کیا. تو پھر اللہ اس کے ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے بات کرے گا، کہ طور پہ بلایا ان کو اور دائیں طرف سے آواز آئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تقرب دیا اور بات کری ان سے اور ان کو قرب دیا. اب تو یہ جو آیا ہے لفظ نجیہ، اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے، کیا ہوتا ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے نجیہ کا، اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی سے راز کی بات کی جائے. تو کس طرح راز کی بات کی گئی؟ کہ جب موسیٰ آئے طور پہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دائیں طرف سے ان کو آواز دی، جو آواز خود اللہ کی تو نہیں تھی، اللہ نے پیدا کری تھی. تو جب آواز آئی تو اس طریقے سے آواز آئی کہ بہت ہی زیادہ قرب دیا، اور ان کو بہت زیادہ اللہ نے عزت بخشی، اور راز کی باتیں کری اور اپنوں سے قریب کرا. تو کیا مطلب قریب کرا؟ اللہ کوئی مکان تو ہوتا نہیں ہے، تو کس طرح قریب کرا؟ تو قریب سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قربت آئی، اللہ نے کو اپنی طرف سے بہت زیادہ درجات دیے، تاکہ وہ اللہ کے رازوں کو سنیں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیہ، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نواز کر ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر اور رحمت کری، اور ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا، تاکہ ان کی وہ مدد کر سکے، جو ان کو کام تھا اس کام کے اندر ان کی نصرت کر سکے. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا. وہ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ صادق الوعدہ اور نبی مرسل تھے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرا ہے، کیا کہا ان کے بارے میں؟ انہ کانا صادق الوعد، اپنے وعدے کے پکے تھے وہ، کانا رسولا نبیا، وہ نبی مرسل تھے، وہ مطلب رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو خاص طور پہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ وہ صادق الوعدہ تھے. صادق الوعدہ مطلب اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتے تھے. تو ان کے بارے میں ہے، زیادہ تر نے کہا کہ یہ وہی اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابراہیم کے بیٹے تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ نہیں تھے جن کا کہ کہا جاتا، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور یہ تھے حضرت حزقیل کے صاحبزادے تھے یہ. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امت نے ان پہ بڑے ظلم کرے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور فرشتے نے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ دیکھیں، میرے لیے پہلے نبیوں کے واقعے کافی ہیں، جو ان پہ ظلم ہوا تھا تو وہ خاموش ہو گئے. تو اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی ان کی، کہ انہوں نے کچھ شکایت نہ کری امت کی. پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی سے ایک خاص وعدہ کرا تھا کہ میں یہاں پر میں تمہارے لیے کسی سے ملنا تھا، جب کسی سے ملنا تھا تو ان صاحب کو آنا تھا، وہ صاحب بھول گانا. वो साहब आना भूल गए, तो ये एक साल तक इंतजार करते रहे उन साहब का कि वो आएंगे, और इस तरीके से उन्होंने अपने वादे को पक्का करके दिखाया। जब एक साल इंतजार करा तो कुरान में उनके लिए आयत आई कि वो वादे के पक्के थे। इसी तरह सरकार से भी है कि सरकार ने से एक शख्स ने कहा कि मैं आप यहाँ खाने काबा के पास ठहरिए, मैं आपसे बिल ले आऊँगा, तो साहब भूल गए। तो सरकार तीन दिन तक मक्के में रहे और उनका इंतज़ार करते रहे, तो किसी ने उन साहब को कहा कि देखें आपने वादा किया था रसूल अकरम वहाँ पर काबे के वहाँ हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको बड़ी शर्म आई, वो आए तो मालूम पड़ा कि सरकार वहाँ मौजूद थे क्योंकि उन्होंने वादा करा था। आप हमारी क्या हालत है, हम वादा करते हैं हम उसको पूरा नहीं करते। कुरान में बार बार है कि वादा पूरा किया जाए, मोमिन की निशानी है कि वो वादा खिलाफ ही नहीं करता। और आज की हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि अगर मतलब आपने इंशाल्लाह करा तो मतलब वो वादा पूरा हो गई नहीं, आज की आपने हारी हालत ये है। और उनकी ये अल्लाह सुब्हान व तआला आगे क्या तारीफ करी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की, वो काना यामरु وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, और अपने अहल को नमाज और जक़ात का हुक्म दिया करते थे और वो अपने रब के नज़दीक पसंदीदा थे। सुभान अल्लाह। तो अहल से क्या मुराद है, कौन था उनका अहल? अहल उनका ख़ानदान था। ख़ानदान के अलावा तफसीर में ये भी कि जो उनकी थे आस पास के लोग उनको भी वो यही कहा करते थे, जो उनके आस पास के जो असहाब थे उनको यही कहा करते थे, उम्मत के लोगों को कहा करते थे कि तुम नमाज की पाबंदी करो और ज़कात दो। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, कितनी अच्छी बात कही उनके लिए, काश हमारे लिए ऐसी बात हो जाए। वो कान अंदर रब्बी मर्दिया, वो अपने खुदा के लिए नज़दीक पसंदीदा थे। بذكر في الكتاب ادریس انه كان صدیقا نبیا, آپ کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے, بے شک وہ صدیق نبی تھے, صدیق نبی تھے. ورفعناه مکانا علیا, اور ہم نے انہیں اونچے مقام پر بلند کیا. اللہ اکبر. دو آیتیں ان کے لیے آئی ہیں. क्या आया पहले के कागज इदरीस का जिक्र करें जो कि सिद्दीक थे, सच्चे नबी थे, और अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको उनको ऊंचे मकाम पर बुलंद किया, ऊंचे मकाम पर बुलंद करा. जो भी कहते थे वो सच कहते थे, वो खुसूसन जो सच ये होता कि अल्लाह की आयतें हैं, अल्लाह का कलाम, उसको सही सही पहुँचाते थे, और अल्लाह तआला ने उनको मकानन अलिया रफा ना हो मकानन अलिया ऊँचे मकाम में उठाया. तो मीज़ा का कहना है कि ऊँचे मकाम से उठाने से क्या मुराद है, तो क्या रूहानी तौर पर असल जो उनका मकाम है वो रूहानी तौर पर वो ऊँचे उठे हैं, ये उनका असल मकाम है. लेकिन बाज़ रिवायतों में है कि उनको चौथे आसमान पर उठा लिया गया है. चार नबी हैं जो कि अल्लाह के पास मौजूद हैं और बाहयात हैं, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम है, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है, खिज़र अलैहिस्सलाम है, का भी जिक्र है इसमें. आयतुल्लाह ईमानी तफसीर से मैं हवाला दे रहा हूँ, खिज़र का भी जिक्र है और इलियास अलैहिस्सलाम है. और ये सब के सब जब मौला का ज़हूर होगा तो सब साथ में आएंगे. तो इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ये है कि उनका नाम इदरीस इसलिए पढ़ा के वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, पढ़ते थे, पढ़ने के शौकीन थे, काफ़ी स्टडीज़ किया करते थे, इसलिए उनका दर से नाम इदरीस पड़ा उनका. और ये थे जिन्होंने पहली बार कलम से लिखा, और इन्होंने एक और था ओनर के वो कैसे सीना उन्होंने लोगों को सिखाया, सिलाई जो होती है इन्होंने सिखाई लोगों को. तो इनके बारे में कहा जाता कि इनके इतने अच्छे इनके नेक अमल थे कि पूरी उस वक्त की जो पूरी दुनिया थी उसमें जितने लोग थे उन सब के अमल मिला दो उनसे ज़्यादा इनके ज़्यादा नेक अमल थे. तो ऐसे रिवायतें हैं, मैं मीज़ान से हवाला दे रहा हूँ आपको कि एक बार इनके पास मौत का फरिश्ता आया मिलने से, तो उन्होंने कहा कि तो इन्होंने कहा मेरी तीन ख्वाहिशें, तुम तीनों ख्वाहिशें पूरी कर दो. कहा क्या ख्वाहिश? कहा कि मुझे फ़ौरन मार दो. तो उनको फ़ौरन मार दिया. फिर कहा कि अब क्या दूसरी ख्वाहिश है, कहा कि आप मेरी रूह को लेके दोजख में लेके जाओ, तो उनकी रूह को लेके दोजख लेके चले गए। कहा कि अब तीसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे जन्नत में लेके जाओ, तो इनको लेके जन्नत में चले गए। तो जाके वहाँ पर खूब जन्नत में बैठ के उन्होंने पानी वानी पी लिया और मेवे वे खा लिए, तो फिर वो मौत के फरिश्ते ने कहा कि अब आपका तीनों ख्वाहिशें पूरी हो गई, अब आप वापस चलें। तो उन्होंने कहा कि अब तो वापस जाने का काम ही नहीं मेरा, अब मेरा वापस जाने का काम ही नहीं है। तो फिर कुरान में तीन आयतें हैं, तो उन तीनों आयतों का हवाला इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को दिया। और पहला तो क्या है कि कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो कहा कि जब हर नफ्स को मौत आना था, मैंने तो मौत का मजा चख लिया, क्या तुम्हारा मेरा क्या क्या झगड़ा है, मैंने मौत का मजा चख लिया। और क्या कहा कि दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि कुरान में आया था जो उन्होंने जिक्र करा, उस वक्त कुरान तो नहीं आया था लेकिन उन्होंने जिक्र यही करा, वो इन मिनकुम इल्ला वारिद हुआ, ये जो 71वीं आयत है 71 के तुम में कोई ना होगा लेकिन उसको उसके पास आना पड़ेगा, तुम में कोई नहीं होगा मगर उसके पास आना पड़ेगा। तो इससे क्या मुराद है, इन मिनकुम इल्ला वारिद हुआ, तुम्हें कोई नहीं मगर उसके पास रहना पड़ेगा, पास मतलब तुम सबको दोजख के पास आना है। दर हकीकत तफसीर बाद में बयान होगी इसकी डिटेल में आगे इसी सूरे में कि दोजख के अंदर से जाना पड़ेगा। तो कहा कि अब मैं दोजख में भी आ चुका हूँ, फिर कहा कि फिर सूरे हिज्र की आयत है, वमा हुम मिन्हा भी मुखरिजीन, और वो वहाँ से निकाले न जाएंगे, मतलब जन्नत से निकाले न जाएंगे। तो कहा तीनों तो हो गया मेरा, मेरी मौत भी आ गई, मैं दोजख से भी होके आ गया, अब आखिरी आज जन्नत क्या है कि उसमें से निकाले न जाएंगे, क्योंकि आयत आ चुकी सूरह हिज्र के जन्नत ही जन्नत जाएंगे तो फिर उसे निकाले नहीं जाएंगे। तो यार जब मौत के फरिश्ते से तीनों बात कही तो अल्लाह की आवाज़ आई कि मौत के फरिश्ते इधर से बेहोश मत करो, अब इनको यहीं रहने दो। तो ये होता इल्म, क्योंकि ये होता इल्म कि जब आदमी को इल्म होगा तो उसमें ताकत भी आएगी, समझ भी आएगी, और वो अपनी बात पे कायम रह सकता है, क्योंकि वो साहिब इल्म थे तो उस वजह से वो जन्नत के इस मुकाम पे मौजूद हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमको भी कुरान का इल्म इस तरीके दे कि हम उसको सीखें और समझें, उस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अहम मिन नबीन मिन दुर्रियत आदम व मिम्मन हमलना नूह ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبيناه إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اور یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل جنہیں ہم نے नूह के साथ किश्ती में सवार किया था, और इब्राहिम और इसराइल की नस्ल से और ये लोग और ये उन लोगों में से थे जिन्हें हमने हिदायत बख्शी और उन्हें बरगुजीदा करार दिया। उनका ये हाल था कि जब उनके सामने आयत रहमान तिलावत की जाती थी तो वो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। ये लंबी आयत है और ये आयत के बारे में मीज़ा ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आम तौर पे जो सूरे होते हैं ना उसके अंदर सूरे में क्या होगा, या तो उसका बयान जब सूरे की शुरुआत होती है उस वक्त हो जाता है या आखिरी में होता है, वो बड़े खूबसूरती से होता है। इस सूरे मरियम के अंदर वो जो चीज़ आई है बीच में आदि रख दी अल्लाह ने, न तो शुरू में रखी ना आखिरी में, बीच में रखी है। क्या कह रहा है अल्लाह सुब्हान व तआला, सारे अंबिया का जिक्र करा है, उनकी शान बयान करी आगे पीछे सब तरह, वो बीच में जिक्र किया गया है। क्या कह रहा है कि अल्लाह कहना क्या चाह रहा है कि ये जो किस किस से जिक्र आया था, अभी जिक्र किस किस से आ चुके हैं, सूरे मरियम में जिक्र किन किन के आ चुके हैं, यहाँ अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, बीबी मरियम, ईसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम, इन सब के जिक्र आ चुके थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा है, ये वो अंबिया हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाए थे, इन सब पे अल्लाह ने सबके नाम पहले जिक्र हो चुका है कि इनाम फरमाए थे। कौन चार ग्रुप बना अल्लाह ने, एक तो वो था आदम की औलाद, इनमें से कौन कौन थे, ये जो नाम है आदम की औलाद में से और उन लोगों की नस्ल जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, तो हालांकि वही थे लेकिन अल्लाह ताला ने खास उनको फिर बताया, वो थे तो आदम की जरूरत, लेकिन फिर अल्लाह ने एक खास बख्शी इज्जत का नूह के साथ जिनको कश्ती सवार करा था, और इब्राहिम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से, और यही लोग हैं उसमें से। और इनके बारे में क्या कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें हमने हिदायत बख्शी थी और उन्हें बरगुजीदा करार दिया था। अल्लाह जब उनके सामने आयत रहमान की तलावत की जाती थी तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। तो इसके अंदर मीज़ा ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, क्योंकि ये सारा अंबिया का जिक्र तो हो चुका ना, उसके बाद जो आगे जो आखिरी में जो जिक्र आया ना कि नस्ल से, और ये उन लोगों में से थे जिन्हें जब आयत आई कि हमने हिदायत बख्शी और उन्हें बरगुजा किया, जब आगे ये जुमला चला तो क्या इसमें अंबिया के साथ दूसरे लोग भी शरीक हैं। अब जो आगे आयत चली है ना, नाम तो आगे चार की ग्रुप बता दिया अल्लाह ने, आगे जो अल्लाह ने कहा ना उसमें मीज़ा ने रोक के कहा कि ये उन लोगों में से हैं जिन्हें हमने हिदायत बख्शी और उन्हें बरगुजदा करार दिया। उनका यह हाल था कि जब उनके सामने आयत रहमान की तिलावत की जाती थी तो वो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे, ये वो लोग थे। तो चौथे इमाम का फरमान है कि ये इजाद हमारे लिए आई है, आई माताहरीन का तभी तो कुछ जिक्र नहीं आया था, सिर्फ मुरसलीन का जिक्र आया था। तो मौला ने कहा कि हम पे आयत आई है, ये आयत की इसकी जो शान कितनी है कि जब रोते हुए सजदे में गिर जाते थे, रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। तो इस बारे में बहुत खूबसूरत बहस करी मीज़ा ने कि जो आखिरी जो ग्रुप है उसके बारे में, और जो आयत लिए सूरह निसा की आयत लिए 69 वर्स, ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ وہ ہیں جن پہ خدا نے انعام کیا، ان میں سے نبی بھی ہیں، اکیلے نبی نہیں ہیں، اب سن لیں کون کون ہیں، جو کہ خدا رسول کی اطاعت کرے گا یہ بہت بڑا لطف ہے، انعام ہے۔ اس میں کون کون ہے اللہ فرما رہا ہے 69 آیت میں، نساء میں یہ میزان نے کہا، نبی صدیقین بھی اس میں شامل ہیں، اور شہداء بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، صدیقین و شہداء و صالحین یہ سب اس میں آتے ہیں، اور ان کی رفاقت بہت خوبصورت ہے۔ اللہ نے کہا کیا خوبصورت رفاقت ہے، یہ آیت مومنین کے لیے بڑی 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 امید کی آیت ہے کہ صدیقین صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں اور انبیاء کی رفاقت حاصل ہو سکتی ہے۔ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ذریت تھی اور ان پہ اتنے انعام ہوئے، لیکن ان میں کچھ ایسے تھے ان کی ذریت میں آدم کی نسل سے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فمن خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہش نفسانی کی اتباع کی، ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یا اللہ، دیکھیں آپ تو کیا چیزیں رہیں، دو خاص کیا چیزیں رہیں کہ انہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہش نفسانی کی پیروی کری۔ سوف القونا غیا، تو وہ اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ نماز کو برباد کرنے سے کیا مراد ہے، نماز چھوڑنا کیا؟ نہیں، مطلب کہ نماز کی جو شرائط ہیں ان کی پابندی نہ کرنا، اور نماز کو وقت پر نہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے برباد کرنا۔ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھا اور اس کو ٹالا، اس نے نماز کو برباد کرا۔ کیونکہ نماز کیا کرتی ہے، نماز شہوت سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ جس نے نماز کو ہلکا کر دیا تو شہوت میں اور خواہش نفسانی میں پھنس جائے گا، تو جس نے نماز ہلکی کر دی اس کو شہوت آ جاتی ہے اور خواہش نفسانی میں پھنس جاتا ہے۔ تو رسول اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری امت، مطلب 60 سال بعد میری امت ایسی ہو جائے گی، مولا فرماتے ہیں कि वो नमाज को बर्बाद कर देंगे और ख्वाहिशों के पीछे चलेंगे 60 साल बाद, और वो लोग उन लोगों की बर्बादी हलाकत है, और फिर उसके बाद ऐसे लोग आएंगे जो कि कुरान को पढ़ेंगे लेकिन गले से नीचे नहीं उतरेगा कुरान। और तीन तरह के लोग कुरान पढ़ेंगे, एक तो होंगे जो मोमिनीन, और एक वो होंगे जो होंगे मुनाफिकीन, और होंगे जो खुले गुनाहगार होंगे, सरकार ने फरमाया। और एक और हदीस है सरकार की, सरकार फरमाते हैं कि 60 साल के बाद ऐसे लोग आएंगे जो कि सिर्फ शोशान के लिए कुरान पढ़ेंगे, उनका कुरान उनके कंधे से ऊपर तक भी नहीं जाएगा। अल्लाह के पास जाना तो की बात तो बहुत दूर ही की है, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा मुनाफ़क़त होगी 60 साल बाद। मौला अली फरमाते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक हदीस है, डर लगता है इस हदीस से, कि मौला ने फरमाया इस आयत के बारे में कि वो लोग ख्वाहिशों के पीछे पड़ जाएंगे, तो तीन चीज़ें मौला ने फरमाई, डर लगता है, डरें क्या, उनकी निशानी क्या होगी कि वो बड़े बड़े मकान बनाएंगे और शानदार सवारी में घूमेंगे और महीन लिबास पहनेंगे। आजकल हर आदमी कर रहा है महीन लिबास, अल्लाह बचाए। फसोफा अलकौना गैया से मुराद, सरकार फरमाते कि ये जो गैया है, ये जो गई है, ये जहन्नम की एक एक जगह का नाम है गई, जहां पर के लोग जाएंगे। ये अब आखिरी दिन है शाबान का, तौबा करें अल्लाह सुब्हान तआला से, आज आखिरी शाबान है, कल से रमज़ान है, अल्लाह सुब्हान तआला हमको इसमें दाखिल न करे, तौबा करते हैं अल्लाह से। आगे अल्लाह ने कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिलु सालिहान फाउलाइका यदखुलून जन्नत वला युज़लमून शैआ, मगर जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और अमल सालेह बजा लाए तो वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर किसी किस्म का जुल्म ना होगा। तौबा कर लें, नमाज को वक्त पे पढ़ें, ख्वाहिश नफसानी के पीछे न पढ़ें, तो अल्लाह बख्शने को तैयार है, रहीम बख्शने को तैयार है, जन्नत में दाखिल करने को तैयार है, रहीम। जन्नती अदन लती वाद रहमान इबाद हो बिलगैब इन्हों काना वाद हो मत्तिया, उनके लिए हमेशा रहने की वाली जन्नत हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दर पर्दा वादा कर रखा है, उसका वादा पूरा होकर रहेगा। किसी जन्नत हैं जो दर पर्दे में, किसे पर्दे में, वो ऐसी जन्नत है, न किसी ने ऐसा देखा होगा ना सुना होगा, ऐसी जन्नत है बिल्कुल पर्दा पड़ा। जन्नत इन आदनी, हमेशा रहने की जन्नत है। किसका? रहमान का वादा है। किसका वादा? रहमान का वादा जो पूरा होकर रहेगा, टूटेगा नहीं, हक वादा है। ऐसी पर्दे में बड़ी जन्नतों का क्या कहा है, मत्तिया कभी टूटेगा ही नहीं वादा। किसका वादा? रहमान का वादा। पहले तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की तारीफ करी थी कि वो वादे के पक्के थे, फिर अल्लाह ने खुद वादा करा जन्नत का, फिर हमको क्या शक है, ये हमारी कमबख्ती है ना। ला यस्मऊ फीहा लग़वन इल्ला सलामा वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुकरतन व अशिया, उस जन्नत में कोई लघु बात नहीं सुनेंगे, यहाँ बस सलाम की आवाज़ होगी और उसमें उनका रिस्क सुबह और शाम मिलता रहेगा, कोई लघु बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ सलाम की आवाज़ आएगी, उनको सुबह शाम रिस्क मिलेगा। सुभान अल्लाह, मतलब सुबह शाम से मुराद है कि लगातार मिलता रहेगा, बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, लघु नहीं सुनेंगे। लघु क्या होती है? जो बात किसी काम की नहीं होती है। अल्लाह ताला ने मना कर लघु से कि लघु नहीं करें, तो हमको यहां आदत डालना, क्योंकि अल्लाह ने कहा मोमिनों को कि लघु नहीं करें, तो हमको यहां सीखना है यार ये चीज़ के बेफालतू बातें नहीं करें, ये जो ये काम काफिरों का फालतू बात करने का। और कौन सी बात? चुपती हुई बात, दर्द देने वाली बात, ये खुसूस कुफार मोमिनों से चुभने वाली बात करते हैं, ये भी बात नहीं करें, सिर्फ सलामती की बात करें, तो आप जन्नत में रहने लायक होंगे। हैं? तो कैसा माहौल होगा जन्नत का? देखिए जन्नत का माहौल कैसा होगा, जन्नत माहौल में फालतू बात नहीं होगी, हर एक दूसरे को सलामती की बात करेगा, किसी को चुपती बात नहीं करेगा, बुरी बात नहीं करेगा। हमको जन्नत में रहने के लिए अपना को ट्रेन अभी से करना ना भाई, आइमा ताहरीन की क्या सीरत थी, उसी बात करते ना आप आप स्कॉलर्स के पास जाएं, किसी अच्छी बात करते हैं, ये तो हमको भी सीखना चाहिए ना कि हम भी अच्छी बातें करें ताकि हम इस लायक होंगे हम जन्नत में जाएं। तिलकल जन्नतुल्लती, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादीना मन काना तकिया। और ये जन्नत जिसका वारिस हमने हम उसको बनाएंगे जो परहेजगार होगा, हमको परहेजगार बनना होगा तब हम जन्नत की विरासत हासिल करेंगे। वारिस किसको कहते हैं, विरसा किसको मिलता है, बाप मरता है बेटे को लिख के जाता है, ये होता है विरसा। अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि जन्नत का वारिस बनोगे तुमको अब मिल जाएगा अल्लाह के, तुम उसके वारिस हो अब। लेकिन ये सारे औसाफ आना चाहिए, नमाज मौके पर पढ़ें, रोते हुए सजदे में गिरें, कुरान पढ़ें तो दिखाने के लिए नहीं पढ़ें कि बस कुरान है तो बस यहीं तक चला हलक तक चल रहा है, खुला गुनाह नहीं करें। सरकार ने कहा था 60 साल बाद मेरी उम्मत की हालत ये हो जाएगी, तो वो हालत करबला में दिखने को मिलती है कि एक तरफ आर्य कुरान थे, वो इस तरह के कार्य कुरान थे, मुफ्ती थे, ये सिर्फ दिखाने वाले मुफ्ती थे, ये सब शहवत पसंद, और ये वो थे कि यजीद को खुशकन में लगे थे, दुनियादार थे, सिर्फ की जो करत थी सिर्फ हलक तक थी, और एक तरफ एहलुल बैत थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, आए तो हमने अभी पढ़ा के वो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे, तो रोना देखें तो सैयद सज्जाद का देखें जो मशहूर है, वो सजदा देखें तो इमाम हुसैन का मशहूर है जिन्होंने के हालत सजदे में अपना सब कुछ दे दिया, इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप कुरान